कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम रामा हरे हरे। जय जय प्रभुपाद प्रभुपाद प्रभुपाद, जय जय प्रभुपाद। निताई गौर प्रेमानंदी। श्री राधा श्याम सुंदर भगवान की, श्री श्री गौर निथाई की, श्री उडुपी कृष्ण भगवान की। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो आज के 27 दिसंबर को आप सबका उडुपी में स्वागत है। और सबसे पहले आज जो भी असुविधाएं हुई आपको, उसके लिए मैं राष्ट्रपति की तरफ से आपकी माफी मांगता हूँ। राष्ट्रपति भवन और राष्ट्रपति का ऑफिस और स्वयं राष्ट्रपति रामनाथ जी कोविंद, इनकी तरफ से मैं क्षमा चाहता हूँ। हर स्थिति में शांति बनाए रखना बहुत आवश्यक है, क्योंकि प्रकृति किसी भी समय कोई भी घटना को आपके सामने प्रस्तुत कर सकती है। कोई घटनाएं हमें पता होता है होने वाली है, और कई घटनाएं अचानक हो जाती है, लेकिन दोनों घटनाओं को स्वीकार करने के अलावा हमारे पास कोई पर्याय नहीं रहता है। इसलिए बेहतर यह है कि उसको स्वीकार करें, और वो भी खुशी से स्वीकार करें। और एक और बात है, एक है खुशी से स्वीकार करना, और दूसरा है खुशी के साथ कृतज्ञता के साथ स्वीकार करना। थैंक यू वेरी मच इस भाव से। थोड़ा कठिन है लेकिन जरूरी है बहुत, नहीं तो अगर हम कृतज्ञता से नहीं स्वीकार कर सकते हैं और खुशी से भी नहीं कर सकते हैं तो दुखी तो आपको होना ही है, और कोई चॉइस तो बचता नहीं है हमारे पास। नहीं स्वीकार करेंगे तो दुखी तो होना ही है, उससे अच्छा स्वीकार करेंगे तो अच्छा है, क्योंकि बहुत बार वो हमारे लिए कैसे अच्छा होता है ये पता नहीं होता है, लेकिन भगवान की इच्छा से जो भी होता है वो अच्छे के लिए होता है। उस समय नहीं पता चलेगा हमको कि ये कैसे अच्छा है, लेकिन हो सकता है कभी समझ में आएगा ही नहीं कैसा अच्छा था, हो सकता है बहुत दिनों के बाद में समझ में आएगा कि ये कैसा अच्छा था, लेकिन दोनों तरफ से वो अच्छा ही रहता है। और विशेष रूप से भगवान के स्थानों पर यात्रा करते समय जो भी असुविधाएं होती है उससे आत्मशुद्धि होती है। जब हम भगवान के जगह पर चले जाते हैं, भगवान के विषय में सुनने के लिए, भगवान के विषय में दर्शन करने के लिए, भगवान के स्थानों को देखने के लिए जाते हैं, तो उसमें बाधाएं आती हैं बहुत सारी, और एक नहीं हर एक यात्रा में आती है। हर एक यात्रा में कुछ ना कुछ तो अनपेक्षित होना ही है, जिसके अपेक्षा नहीं थी, जिसका प्लानिंग नहीं था। लेकिन पहले से हमारा मन अगर तैयार रहेगा ना, कैसा होगा कुछ ना कुछ भगवान की इच्छा से हमारी आत्मशुद्धि के लिए, तो हम लोग अच्छे मूड में रहेंगे। और जब असुविधाएं आती है तो उसको आध्यात्मिक भाषा में तपस्या कहते हैं। जैसे कि अभी बैठे हैं सोच रहे हैं दिसंबर का आखिरी हफ्ता है, मतलब ठंड होगी कि नहीं, लेकिन सबके पसीने छूट रहे हैं यहाँ पर, है ना। लेकिन फिर भी आप लोग बैठे हो भगवान की कथा सुनने के लिए, यही तपस्या है। और कलयुग में कोई बड़ी तपस्या नहीं है। रवि आपको ना उधर ही खड़े रहना है, उधर ही। तो वही तपस्या है। और कलयुग में कोई परिवार छोड़ के, धन दौलत छोड़ के, माता पिता को छोड़ के, बच्चों को छोड़ के जंगल में गुफा में जाकर भजन करने का तपस्या नहीं बताया गया है, और ना ही हम लोग कर सकते हैं उसको। कलयुग में यही तपस्या है, भगवान के नाम सुनने में, भगवान के नाम का जप करने में जो भी बाधाएं आती है उसको सह लेना और जाप करते रहना, ये तपस्या है। भगवान के धाम के जाते समय जो कठिनाई आएगी फिर भी जाते रहना, भगवान की कथा सुनते समय बहुत सारे असुविधाएं अभी जैसे हो रही है वैसे होगी, तो भी भगवान की कथा सुनने के लिए उत्सुक रहना, यही तपस्या है। और यही तपस्या करने से ही, और ज्यादा तपस्या करने की जरूरत नहीं है। अभी पसीने आ रहे हैं ना, आने दीजिए, कानों को खोल के रखिए और भगवान की कथा सुनिए, क्योंकि भगवान की कथा सुनने से बहुत तीव्र रूप से आत्मशुद्धि होती है। चरणम श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम, नवदा भक्ति में श्रवण, भगवान की कथा का श्रवण बहुत महत्वपूर्ण माना गया है। और फिर वो जो सुनते हैं उसको ऐसा सुनना है कि याद रहे, और याद रहने के लिए और एक काम करना है, जो सुना है ध्यान से उसको दूसरे को बताना है, उसके विषय में बोधयंत परस्परम, कथयम तो माम तुभ्यम बोधयंत परस्परम। कथा के बाद में जब भी बस में बैठेंगे ना तो डिस्कस करना है क्या सुना था, तो उससे आपको याद रहेगा। मतलब श्रवण करेंगे, कहेंगे, फिर स्मरण होगा, यही फॉर्मूला है, और कोई फॉर्मूला नहीं है। जो सुनेंगे वो कहेंगे दोबारा, उसको दोहराएंगे, तो अपने आप ही स्मरण होगा उसका। और स्मरण ही अंतिम हमारा लक्ष्य है, भगवान का स्मरण। अंतकाले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम, अंतकाले च मामेव श्रवण मुक्त्वा कलेवरम नहीं कहा गया है, अंतकाले च मामेव कीर्तन मुक्त्वा कलेवरम नहीं कहा गया है, अंतकाले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम। अंतकाल में जब आप मेरा स्मरण करोगे तो मुझी को प्राप्त करोगे, ऐसे भगवान ने कहा है। तो वो स्मरण अगर करना है तो श्रवण अच्छी तरह से करना होगा, और वो श्रवण करके उसको दोहराना होगा, फिर अपने आप स्मरण होता रहेगा। और वो स्मरण की स्थिति जो है ना उसको बनाए रखनी है कंटिन्यूअस लाइफ में, जीवन में कुछ भी होता रहे आगे पीछे, लेकिन स्मरण जो भगवान का है वो चलते रहना चाहिए। नहीं तो फिर क्या है, अगर स्मरण नहीं करना है और नहीं स्मरण हो रहा है समझो, तो एक ही चीज होनी है। तो कौन सी चीज है? पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरा शयनम। जैसे अभी गर्मी को कोई चॉइस नहीं है वैसे उसे भी कोई चॉइस नहीं है। जैसे अभी गर्मी को कोई चॉइस है क्या? अभी यहाँ पर तो एयर कंडीशन है नहीं, हवा तो बह नहीं रही है, तो पसीने तो आ ही रहे हैं दिसंबर के 27 तारीख को, लेकिन कोई चॉइस है क्या आपको? नो चॉइस। मुझे भी कोई चॉइस नहीं है, मुझे भी अच्छा लगेगा अगर कोई ठंडी हवा आएगी तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा, लेकिन ना मुझे भी चॉइस है ना आपको चॉइस है, और सब लोगों को एक ही चॉइस है कि फिर भी भगवान की कथा सुने। और नींद भी आए तो क्या करना है? खड़े रहना है बिना शर्मा के, बिना संकोच के। अगर आपको सुनने में आतुरता है तो आपको खड़े होने में संकोच नहीं होगा, अगर आपको सुनने में आतुरता नहीं है तो आपको बैठे बैठे नींद आने में अच्छा लगेगा। मतलब वैसे ही प्रभु जी को कल जगना है, बाकी सबको चॉइस है सोने के लिए सो सकते हैं, स्विच ऑफ भी कर सकते हैं, लेकिन हमें तो स्विच ऑफ करने का अलाउड नहीं है, हमें तो बोलना ही है। तो आप भी सुनिए और हम भी बोलते रहेंगे, जितने स्तर पे आप लोगों को सुनने में उत्सुकता होगी उतने में हमको प्रेरणा मिलती रहेगी। तो आर यू रेडी? बाहर से आवाज नहीं आ रही। जय हरि बोल। ये फॉर्मूला ही ऐसा है, श्रोताओं का सुनने के लिए कितना उत्सुकता है उतने अपने आप बोलने वाले को उत्सुकता प्राप्त हो जाती है, एंथुजियाज्म उत्साह प्राप्त हो जाता है। श्रोता वक्ता से जो कुछ सुनना है वो ऐसा खींच लेते हैं, ये हर जगह का फॉर्मूला है। वक्ता की महानता नहीं होती है, वक्ता अपनी तैयारी करके अपना अपना जो भी उसका मेहनत है वो करके आते हैं, लेकिन श्रोता को जितनी उत्सुकता है उसी के प्रमाण में वक्ता के मुख से भगवान बोलते हैं। यह हमारा परम विश्वास है इस बात पर, हजारों प्रवचन देने के बाद भी यही हमारा विश्वास है कि हम तो केवल अपनी तपस्या करके आते हैं लेकिन बोलते भगवान ही हैं। आपकी इच्छा के अनुसार कितने आपके अंदर सुनने की इच्छा है उतना भगवान आपके लिए सुनाएंगे, हम केवल पात्र हैं उसके, केवल एक इंस्ट्रूमेंट है, जैसे माइक्रोफोन है ना, ऐसे एक औजार है, हम अपने औजार को भगवान के हाथ में दे दिया है तो भगवान उसको इस्तेमाल कर रहे हैं। ये सब आध्यात्मिक सिद्धांत है जिसके वजह से हमारा जीवन चलता है। बाकी सारी चीज़ें जो दुनिया में चलती है ना वो सब मैकेनिकल होती है, उसमें कोई हृदय नहीं होता है। भगवान के विषय में हृदय होता है, आत्मा होती है, भगवान स्वयं होते हैं, भगवान की शक्ति उसमें संचालित रहती है, इसलिए हमारे जीवन में अद्भुत अनुभव आते हैं। और फिर कठिनाई आने पर भी भक्त बड़े उत्साहित रहते हैं क्योंकि हर कठिनाई उनको हर एक अनुभूति नई देती है, हर कठिनाई हर संकट हर प्रकार की चुनौती भक्त को एक नया अनुभूति प्रदान करती है, इसलिए हर चुनौती के साथ और भक्त उत्साहित रहते हैं। जितना सोने को आप स्वर्ण को अग्नि परीक्षा देंगे ना उतना स्वर्ण और चमकता है, ज़्यादा हीट लगाने पर मुरझाता रहा काला नहीं पड़ जाता और प्रकाशित हो जाता है वो। तो भौतिक दुनिया का नियम अलग होता है और आध्यात्मिक दुनिया का नियम अलग होता है। तो आप अभी इतने प्रयास से इतने कष्ट से उडुपी आए हैं, हाँ ये सोचना नहीं अरे बाप रे अभी कभी उडुपी में नहीं आएंगे, पहले दिन का ऐसा अनुभव हो गया। हाँ जब कष्ट होता है ना तो हमारा ऐसा विश्वास है कि भगवान आपको कुछ और बहुत बढ़िया अनुभूति अनुभव देना चाहते हैं, इज प्रिपेयरिंग यू, आपको वो तैयार करना चाहते हैं, क्योंकि जो मिलने वाला है ना आपको वो कोई साधारण वस्तु नहीं है, उसके लिए उसकी कीमत चुकानी पड़ती है। जब श्रेष्ठ वस्तु मिलती है तो श्रेष्ठ वस्तु की श्रेष्ठ कीमत भी देनी पड़ती है, तब वो श्रेष्ठ हो सकती है, ना तो बाकी सामान्य मूल्य पर सामान्य वस्तु मिलती है, उचित दाम पर उचित वस्तु मिलती है। हरे कृष्णा। तो ये जो उडुपी है, उडु यानी चंद्र और पी यानी जिसमें यहाँ पर उडुपी ने चंद्र ने तपस्या की थी या निवास किया था उस स्थान को उडुपी कहते हैं, पहला उसका अर्थ हो गया। लेकिन ये उडुपी केवल एक जगह नहीं है, ये पूरा परशुराम क्षेत्र है। अभी हम जाएंगे उस जगह पर इस यात्रा में, गोकर्ण नाम की जगह है जो गोवा के बाद तुरंत आता है, गोकर्ण। गोकर्ण से लेकर कन्याकुमारी तक जितनी जगह है, जितना पट्टा है पूरा, 1000 से अधिक किलोमीटर का पट्टा है और 100 किलोमीटर से अधिक चौड़ा है, इतना पूरा पट्टा जो है ना उसको परशुराम क्षेत्र कहते हैं। और ये बहुत ही बड़ी समृद्धि की जगह है, परम समृद्धि, यहाँ पर कभी भी अकाल नहीं पड़ता है, कभी कोई चीज़ की कमी नहीं रहती है, हमेशा आप बीच गर्मी भी आएंगे ना तो बारिश के साथ हरियाली रहती है, और बारिश में आएंगे तो आप हैरान हो जाएंगे, इतनी घनघोर वर्षा होती है, समुद्र जैसे दिखने वाली नदियाँ हैं यहाँ पर, हर 10 मिनट में ट्रेन में नदियाँ ही नदियाँ हैं, आप गिनते जाइए, आप कभी जगह रहेंगे ना 24 घंटा ट्रेन में 10 मिनट में एक नदी आएगी, वो भी इतनी विशाल, उसके किनारे पे करोड़ों करोड़ों नारियल के पेड़ होते हैं, ऐसा पूरा भूमि है ये। कारण क्या है उसका, उसकी एक छोटी सी कहानी बताता हूँ आपको। एक रुचिका मुनि थे जिन्होंने सत्यवती नाम से कन्या से विवाह किया, उन दोनों के विवाह से जमदग्नि ऋषि का जन्म हुआ। आप लोग लिखेंगे तो अच्छा रहेगा, आपको याद रहेगा। और जमदग्नि नाम के ऋषि थे, वो आज सप्तऋषि में उनका नाम है, लेकिन तभी वो सप्तऋषि में उनका गिनती नहीं था। जमदग्नि का विवाह रेणुका देवी से हुआ और फिर उन दोनों के मिलन से भगवान के छठे अवतार का जन्म हुआ। उनका नाम क्या था? परशुराम जी भगवान की। तो भगवान जब अवतार लेते हैं, आप जानते हैं, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानम सृजाम्यहम्। जब धर्म की ग्लानी होती है, अधर्म का वृद्धि होती है, तो धर्म संस्थापन करने के लिए भगवान आते हैं, साधुओं की रक्षा करने के लिए आते हैं, राक्षसों का नाश करने के लिए आते हैं, धर्म को स्थापन करने के लिए आते हैं। वैसे ही परशुराम जब आए थे तो क्षत्रियों का अहंकार बहुत बढ़ गया था, बहुत ज़्यादा आतंक था उनका। क्षत्रिय को भी अपना शक्ति होती है, क्षति त्रायते इति क्षत्रिय, जो क्षति आपके जीवन में क्षति यानी नुकसान को टालते हैं, बचाते हैं आपको नुकसानों से, या क्षति यानी क्या कहते हैं उसको, हानि से आपको बचाते हैं, जो दूसरों के ऊपर होता हुआ अन्याय सहन नहीं कर सकते हैं। अन्याय आपके ऊपर हो रहा है लेकिन उसको यहाँ पर असह्य हो रहा है और वो कुछ ना कुछ करेगा आपको, आपके ऊपर अन्याय को बचाने के लिए, वो क्षत्रिय है। केवल प्रशासन करने वाले क्षत्रिय नहीं होते, लेकिन उस समय ये सारे क्षत्रिय जो है अपने शक्ति के वजह से, अपने क्या कहते हैं पावर के वजह से ना अहंकारित हो गए थे। तो उस समय परशुराम का जन्म हुआ। जमदग्नि ऋषि के आश्रम में जन्म हुआ तो झोपड़ी में रहते थे, जंगल में रहते थे, उनके पास कामधेनु थी। तो एक बार एक राजा उनके पास आया, कार्तवीर्य अर्जुन, बहुत फेमस राजा है वो, इतिहास में उनका बड़ा नाम है। कार्तवीर्य अर्जुन, ये पांडवों का अर्जुन नहीं है, अलग अर्जुन है, कार्तवीर्य अर्जुन। ये जमदग्नि के पास में आते हैं और जमदग्नि उनकी और उनकी सेना की ऐसी सेवा करते हैं, ऐसा भोजन खिलाते हैं जंगल में, बड़ा आश्चर्य होता है, अरे इतने फकीर बाबा दिखते हैं लेकिन कितना बड़ा भोजन कराया हमको। तो पूछा, रहस्य क्या है इसका? तो कहते हैं, हमारे पास कामधेनु है। कामधेनु यानी वो धेनु, वो गाय जो हर काम को पूरा कर देती है, हर इच्छा को पूरा कर देती है। आप खाली इच्छा करने मात्र से क्या चाहिए आपको, सब कुछ दे देती है। तो राजा आए सैनिकों को लेकर, हजारों लोगों को, तो विनती किया तो उन्होंने सबके लिए भोजन पैदा किया, गाय ने, ऐसा ही कामधेनु कहते हैं उसको। तो राजा को लगा, अरे मेरे पास वो वस्तु नहीं है, वो वस्तु इस फकीर बाबा के पास है। ऐसा कैसे हो सकता है, राजा की हर वस्तु पर राजा का अधिकार होता है। तो जमदग्नि को कहते हैं कि वो गाय मुझे दे दो। तो कहते हैं, नहीं दे सकता आपको मैं, क्योंकि मेरे साधना के लिए, यज्ञ के लिए, छोटी सी जिंदगी के लिए, तपस्या के लिए जो आवश्यक है वो सब कुछ वो मुझे देती है, उसका कोई दुरुपयोग नहीं करता हम। फिर भी वो कामधेनु को छीन कर लेके जाते हैं अपने बल से। उस समय बालक परशुराम जो है ना, वो बाहर गए होते हैं। जब लौट के आते हैं तो देखते हैं तो क्या, कामधेनु को लेकर चले गए, वो महिष्मति राज्य पे लेकर चले गए, जहां पर कैपिटल था उनका, राजधानी थी। तो परशुराम जी महाराज गए वहां पर, उन्होंने युद्ध किया और कार्तवीर्य अर्जुन का वध कर दिया। कार्तवीर्य अर्जुन का पहले मांग किया जाके, ऐसा आक्रमण नहीं किया सीधे जाके, पहले बोला गाय दे दो वापस पिताजी की, नहीं दिया उन्होंने। तो युद्ध हुआ उनका, युद्ध होने के बाद कार्तवीर्य अर्जुन का परशुराम ने वध कर दिया और कामधेनु को लेकर लौटकर घर आए। जब युद्ध हो रहा था, पिताजी का मृत्यु हुआ, तो कार्तवीर्य अर्जुन के कुछ पुत्र थे वो भाग गए वहां से युद्ध से, और ये यहाँ लौट के आए और गाय वापस दिया अपने पिताजी को। और फिर अभी किसी जंगल में लकड़ी तोड़ने के लिए चले गए, तो ये भागे हुए जो बच्चे थे कार्तवीर्य अर्जुन के, पिता के हत्या के प्रतिशोध की भावना से आए और जमदग्नि का सर काट दिया और चले गए। फिर परशुराम जी को इतना क्रोध आया, इतना क्रोध आया कि उन्होंने परशु लिया और 21 बार पृथ्वी का भ्रमण किया और सारे क्षत्रियों का संहार किया उन्होंने। तो उसमें कौन कौन बचे? दशरथ महाराज बचे, क्योंकि दशरथ महाराज भी उस समय थे दुनिया में जब परशुराम जी अपना लीला कर रहे थे। लेकिन कहते हैं कि 350 बार अयोध्या की ओर से गुजरे परशुराम जी, 21 भ्रमण में अनेक बार वहां से गुजरे, 350 बार गुजरे तो हर बार दशरथ महाराज ने एक औरत के साथ विवाह किया, इसलिए उनकी 353 पत्नियां हैं, तीन मेन पत्नियां और 350 ऐसी जो हर बार, क्योंकि परशुराम जी का एक नियम था कि जब मैं आक्रमण करूंगा क्षत्रियों पर, जो क्षत्रिय बीच में बैठे रहेंगे और सारे स्त्रियों को अपने इर्द गिर्द रखेंगे, यानी कि नारी कवच, स्त्री जैसे यहाँ नारियां बैठी हैं, जो एक पुरुष आके बैठ गया और सब नारियां उनको सर्कट करके बैठ गई, तो वो हो गया नारी कवच, नारियों का कवच लेकर बैठा है वो, उसको नहीं मारते थे वो, और जो यज्ञ कर रहा है उसको नहीं मारते थे, और जो विवाह कर रहा है उसको भी नहीं मारते थे। तो परशुराम के आने का खबर आ गया ना, आ रहा है, तो सब लोग कोई ना कोई विवाह कर रहा है, कोई यज्ञ कर रहा है, कोई नारी कवच लेकर बैठा है। तो इस तरह से कुछ कुछ बचे और बाकी सबका संगार हो गया। 21 बार पृथ्वी की प्रदक्षिणा, ऐसा कहते हैं कि उन्होंने इतना खून बहाया क्षत्रियों का कि नदियां बहने लगी खून की, उन्होंने 9 तालाब बनाए खून के, 7-7 तालाब बनाए। इधर से जाना, तो ऐसे संहार करने के बाद में फिर वो शांत हो गए, और फिर उन्होंने जितनी भी भूमि, उन्होंने सबको परास्त किया ना, सारी भूमि धन उनका हो गया, तो उन्होंने ये संहार करने के लिए ये सारी भूमि को दान में दे दिया संतों को। अभी उनको तपस्या करनी थी खुद को आगे के जीवन में, लेकिन उन्होंने चाहा कि मैं दूसरों को दी हुई जमीन पर, दान की हुई जमीन पर बैठकर तपस्या नहीं करूंगा, तो उन्होंने समुद्र से जमीन मांगी, समुद्र ने मना कर दिया उसको, वरुण देव ने, तो उन्होंने फिर गोकर्ण के पास खड़े हो गए, वो आज का जहाँ गोकर्ण हम जाने वाले हैं वहाँ पर, तो वहाँ से परशु फेंकने के लिए खड़े हो गए ना, तो समुद्र देवता भाग के आ गए और बोला क्या चाहिए आपको। मैंने कहा मैं यहाँ से परशु फेंकूंगा, जहाँ तक पहुँचेगा उतनी भूमि मुझे आप दे देना। तो परशु उन्होंने फेंका गोकर्ण से सीधे कन्याकुमारी के समुद्र तक, क्योंकि भारत में समुद्र कैसा है, ऐसा गोल है ना, तो एक जगह पर भूमि आती ही नहीं है, वो भूमि खत्म हो जाती है। राइट साइड में समुद्र है, आगे समुद्र है, और लेफ्ट में भी समुद्र है। तो इस तरह से वो सारा जो भूमि है 100 किलोमीटर से अधिक चौड़ा, 1000 किलोमीटर से अधिक लंबा, वो क्षेत्र तैयार हो गया। उसको हमारी इंग्लिश भाषा में क्या कहते हैं, रेक्लेमेशन, ओशन रेक्लेमेशन। जैसे हमारी बैंड्रा में कैसे है, बैंड्रा रेक्लेमेशन। वो क्या है, बैंड्रा में भी समुद्र से जमीन ली गई है, ऐसे आगे भराव करते हुए। कि समुद्र वहाँ से क्या करता है, सुनामी भेजता है। हाँ, वो हम लोग परशुराम थोड़ी है, परशुराम ने ऐसे अपने अधिकार से मांग लिया, हमने अपने छीन लिया तो फिर पालघर में या और कहीं भी सुनामी आता निकल के। निसर्ग से खिलवाड़ नहीं कर सकते हम, केवल भगवान ही कर सकते हैं, जो निसर्ग को निर्माण करते हैं वही उनके साथ में जो लीला कर सकते हैं, हम लोग उनके हाथ में खिलवाड़ नहीं कर सकते। तो फिर उन्होंने क्या किया, ये क्षेत्र जो है उसका नाम पड़ा परशुराम सृष्टि या परशुराम क्षेत्र। और फिर उन्होंने वो भूमि को भी दान कर दिया 10 ऋषियों के बीच में, वो एक दूसरी कथा है। ये कथा मैंने बताई आपको, इस निर्माण की कथा बताई कि ये पट्टा निर्माण कैसे हो गया, और वो भी 10 ऋषियों को दान कर दिया और खुद महेंद्र पर्वत पर तपस्या करने चले गए। और 10 ऋषियों को जो आशीर्वाद दिया है वो आज के लिए बहुत पर्याप्त है और आवश्यक है आपको समझना। वो ऐसा आशीर्वाद दिया कि ये जो भूमि मैंने तैयार की है वो कभी भी कोई भी कमी नहीं होगी, इसके अंदर किसी भी चीज़ की जो जीवन आवश्यक वस्तुएं हैं उसकी कभी कमी नहीं होगी इसके अंदर। वो क्या चाहिए, पानी चाहिए, फल चाहिए, फूल चाहिए, जड़ी बूटी चाहिए, एवरीथिंग, लेकिन नेचुरल प्राकृतिक रूप से, जरूरत के लिए, इंद्रिय भोग के लिए नहीं, इंद्रिय भोग के अतिरिक्त के लिए नहीं। जो आपको जीवन चलाने के लिए, भजन करने के लिए, जीवन के लक्ष्य प्राप्ति के लिए आवश्यक है वो सब पर्याप्त मात्रा में यहां रहेगा, कभी भी यहां पर अकाल नहीं पड़ेगा। नदी नाले समुद्र जो भी है हर प्रकार से आपके लिए समृद्धि बनी रहेगी, फल फूल धन्य आदि विपुल मात्रा में रहेंगे। तो आप आराम से भजन करो और जीवन के लक्ष्य को प्राप्त करो। लेकिन जब कभी आपको समस्या आएगी, समझो कुछ दुर्घटना ऐसी होगी कि आपको लगा कि अरे आपने जो वादा किया था वो शायद नहीं पूरा हो रहा है, मैंने जो वरदान दिया है उसमें कुछ व्यवधान आ गया, तो मैं आपको एक मंत्र देता हूं, वो मंत्र आप जपिए और मुझे पुकारिए, मतलब मंत्र के माध्यम से एकत्र होकर, दसों ऋषि लोग एकत्र आएंगे, एक जगह बैठेंगे, मंत्र उच्चारण करेंगे एक साथ में बैठकर, तब मैं प्रकट हो जाऊंगा, आप समस्या बताएंगे, मैं तुरंत समाधान कर दूंगा। और क्या चाहिए आपको जिंदगी में, सोचा आप? एवरीथिंग इज गिवन, सब कुछ दे दिया गया आपको, और कुछ कमी हो गई तो मंत्र भी दिया गया है, और खुद आके वादा कर किया हुआ है कि मैं खुद आऊंगा और पूरा करूंगा। तो चालू हो गया इनका जीवन अच्छी तरह से, कोई समस्या नहीं, बहुत समृद्धि से रहे, सादगी में रहे, भजन करते रहे आराम से, लेकिन कोई पानी, जल, वायु, फल फूल, जड़ी बूटी कोई इत्यादि किसी की कमी नहीं रही। तो फिर जैसे बच्चा होता है ना, उसे कुतूहल होता है ना, कुतूहल, तो एक दिन कुतूहल हो गया, अरे वो मंत्र का क्या हुआ, मंत्र तो इस्तेमाल कभी करने का मौका ही नहीं आया, तो कुतूहल बढ़ गया, आपने पूछा, मैंने पूछा, इन्होंने पूछा, इन्होंने पूछा, सबने पूछा, बोले इसका तो क्या हुआ। ऐसे हमारे इसमें भी एक हुआ था बीच में, कुंती देवी को 5 वर मिले थे, और कहा गया था कि किसी भी एक मंत्र को पुकारेंगे ना तो एक देवता उस मंत्र के वश में होगा, एक देवता, कोई भी देवता आप मन में सोचो और ये मंत्र उच्चारण करो, वो देवता आपके वश में होगा और आपको पुत्र प्राप्ति करा के चला जाएगा वो, और करनी ही पड़ेगी उसको। तो कुंती तभी तो कुंवारी थी, फिर भी उसको कुतूहल हुआ बहुत, उसने सूर्यदेव को देखा और मंत्र का उच्चारण किया, तुरंत सूर्यदेव आए, कहा नहीं 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 मैं तो कुंवारी हूं, नहीं नहीं, आपने मंत्र उच्चारण किया है, मंत्र का दास हूं, दुर्वासा मुनि ने ये मंत्र दिया आपको, मैं उसका आदर रखना मेरा कर्तव्य है, और ये पुत्र आपको मिलेगा और आप भी कुंवारी रहेगी, ये पुत्र आपके कान से जन्म लेगा। और तुरंत पुत्र का जन्म हुआ, रेडीमेड बेबी हैंड में, सोचिए आप 9 महीने के प्रेगनेंसी वगैरह कुछ नहीं, डायरेक्ट सूर्यदेव आए और पुत्र को हाथ में दे के गए, कान से प्रकट करा के गए, इसलिए उसका नाम कर्ण पड़ा। ऐसे इनको भी कुतूहल हुआ, एकत्र आए, मंत्र उच्चारण किया, तुरंत परशुराम जी प्रकट हो गए, और सब लोग डर गए क्योंकि समस्या तो कुछ है नहीं, उन्होंने कहा था समस्या होनी चाहिए, अभी क्या बोलेंगे, सब लोग छुप छुप के दंडवत करेंगे, क्या कहेंगे संकोच में। तो कहते हैं आयुष्मान भव, बताइए क्या समस्या है। उन्होंने कोई समस्या नहीं है, तो आप जानते हैं परशुराम बहुत क्रोधी थे, बहुत क्रोध आया उनको, उन्होंने आपने मेरे दिए मंत्रों पर शंका उत्पन्न किया, संदेह रखा मन में, और एक बच्चों की तरह आपने कुतूहल से रूप में उसको उच्चारण किया, मैं आपको शाप देता हूं, आपकी एकता भंग हो जाएगी। अगर आज अब कोई कुछ किसी को बोलेगा ऐसे शाप तो लेके, तो क्या फर्क पड़ता है, वैसे भी एकता थी नहीं पहले से, है ना, एकता भंग होगी ये शाप सुनकर बेशुद्ध कौन पड़ेगा, जिनकी भयंकर एकता थी उनको ये सुनकर इतना दुख होगा, उन ऋषियों की थी ऐसी एकता, उनके लिए शाप दिया गया, क्योंकि संतों के लिए एकता बहुत आवश्यक होती है, संत अगर 50 विचार वाले हो जाएंगे ना तो आध्यात्मिक जीवन आगे नहीं बढ़ता है, अपने अपने मत होंगे उनके, लेकिन एक वाक्यता होती है उनके अंदर कि मैं एक भगवान को बचते हैं, उनका नाम पुकारते हैं, एक सिद्धांत को भगवत गीता भागवत का पालन करते हैं, इसमें कम से कम एक वाक्यता होती है। जब उन्होंने शाप दिया तो सब डर गए, चरणों में गिर गए, माफ करना हमने गलती किया, तो फिर वो भी थोड़े द्रवित हो गए, उन्होंने कहा कोई बात नहीं, आगे आने वाले हार्वेस्ट यानी कि जो खेती आती है ना, फसल उगती है ना, क्या कहते हैं उसको, फसल लाने का समय जब आएगा ना, तो 10 दिन आप विष्णु भगवान की फलों से, फूलों से और धन धान्य से, जो नए आए धन आएंगे ना, धान्य आएंगे, उससे आप उनकी पूजा करना, सिंहासन पे उनको विराजमान करके, स्थापन करके 10 दिन तक उनकी धन धान्यों से, फल फूलों से उपासना करना, पूजा करना, तब ये शाप नष्ट हो जाएगा। और उसी उत्सव को ओणम कहते हैं, जो ओणम उत्सव जो है ना, उसमें ये भी कहा है भगवान ने कि सबको आप प्रसाद बांटेंगे, जो भी रोज भगवान को भोग लगाएंगे फल फूलों का, वो सब किसी भी जाति, किसी भी धर्म, किसी की भाषा, किसी भी कलर, किसी भी वर्ण, किसी भी किसी का भी भेद ना मानते हुए सबको आप ये प्रसाद बांटना मित्रता की भावना से, फिर मैं आपको इस शाप से मुक्त कर दूंगा। तो वो 10 दिन का जो ओणम का उत्सव है वो इस भावना से मनाया गया। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो इसके बाद में अपने क्षत्रियों की हत्या के तथाकथित, भगवान तो पाप नहीं कर सकते कभी, भगवान तो अपापविद्ध है, उनके पास पाप आने पर वो पाप खुद नष्ट हो जाते हैं, इतने भगवान पावरफुल हैं। लेकिन फिर भी भगवान जब आते हैं ना तो जनता के लिए आदर्श के रूप में कार्य करते हैं, और मनुष्य के तरह मनुष्य को क्या करना चाहिए वो खुद करते हैं। तो पश्चाताप की भावना से, या तो क्या कहते हैं उसको, अटोनमेंट, हाँ, भगवान ने अनेक यज्ञ किए, भूमि दान किया, और फिर अपने पिता को वापस उन्होंने जीवित किया अपने शक्ति से। फिर पिता जीवित हो गए, और फिर आगे जाकर पिता सप्तऋषि में एक ऋषि बन गए, वशिष्ठ, विश्वामित्र आदि ऋषियों के बीच में जमदग्नि भी एक सप्तऋषि बने। फिर राम भोज नाम के राजा हुए इसी भूमि पर, राम भोज, जो परशुराम के बड़े भक्त थे और परशुराम क्षेत्र के राजा बने। उन्होंने एक बार अश्वमेध यज्ञ करने का निश्चय किया। आप जानते हैं अश्वमेध क्या होता है? हाँ, जवान बूढ़ा वृद्ध अश्व जो है उसको, उसमें वो साधारण अश्व नहीं होता है, उसको गिना चुना अश्व होता है वो, उसको कई हजारों अश्व में से चुनते हैं, बहुत सारे लक्षण होते हैं उसके अंदर, और उसको कई वर्ष लगते हैं उस यज्ञ को पूरा करने के लिए। वो अश्व को सजा धजा कर चारों दिशाओं में भेजना पड़ता है, फिर वो युद्ध के ललकारते हैं, बहुत सारा उसमें वर्णन दिया है। वो हम लोग ना सोच भी सकते नहीं कि अभी अश्वमेध यज्ञ करने का। तो वो अश्वमेध यज्ञ करने के लिए वो निर्णय करते हैं, और जब जमीन उसको यज्ञशाला बनाने के लिए, जमीन को वो नांगरते ना, क्या कहते हैं उसको, हल चलाते हैं, तो वो हल के नोक को लगकर, नोक लगकर एक सर्प का वध होता है, एक सांप की मृत्यु हो जाती है। जमीन के सांप होते हैं ना, वो जब हल चलाते हैं सांप उसमें अटकता है और मर जाता है। तो वैसे तो अश्वमेध यज्ञ के लिए वो भूमि हल चला रहे थे, तो कोई अपराध नहीं था, लेकिन फिर भी परशुराम जी ने कहा कि नहीं, आप उसका पश्चाताप करना। तो फिर राजा ने उसका पश्चाताप करने के लिए परशुराम जी से पूछा है कि मैं क्या करूं, तो परशुराम जी ने कहा कि इस क्षेत्र में उडुपी में आप एक चांदी का पीठ बनाना, रौप्य पीठ कहते हैं उसको, रजत पीठ, और उसके चारों तरफ सांप नाग नाग की मूर्ति लगाना। ये समझो, ये समझो ये पाठ है, बड़ा ऐसा एक पाठ है ना, ऐसे एक पूरा बड़ा पीठ बनाना, उसके चारों ओर नाग स्थापन करना, और उसके बीच में फिर मैं प्रकट हो जाऊंगा, ऐसे उन्होंने कहा। तो उन्होंने वो रजत पीठ बनाया इसी क्षेत्र में, और उस पर परशुराम जी प्रकट हुए। उसको प्रकट होने के बाद में राम भोज ने अपना सुवर्ण तुलाभार किया। अब जानते तुलाभार मालूम है क्या होता है? अपने को एक पलड़े में रखते हैं और उसी वजन का तुला करते हैं, तो सुवर्ण तुला है तो सुवर्ण, धान्य तुला तो धान्य तुला, या तो और भी कोई तुला होती है। तो उन्होंने सुवर्ण तुला किया, और वो शान, तो जो सोना जो है वो सब ब्राह्मणों को, संतों को दान कर दिया। और फिर परशुराम जी प्रकट हुए, उन्होंने कहा कि आपके इस क्रिया से मैं बहुत प्रसन्न हूँ, और ये जगह जो आपने रजत पीठ बनाई है वो बहुत ही प्रसिद्ध तीर्थ क्षेत्र बनेगा, और वही आप जहाँ बैठे हैं वो उडुपी क्षेत्र है, और ये रजत पीठ जो है ये अनंतेश्वर मंदिर में जो रजत, जो भगवान है वही रजत पीठ है जिसके लिए वो मंदिर बनाया गया है। उसके डीटी यानी कि जो भगवान के विग्रह हैं वो रजत पीठ है, उसके अंदर जो मुख है वो परशुराम जी का मुख है। और पीछे और भी कहानी उसकी ऐसी है कि परशुराम जी पद्मनाग के रूप में इस रुपय पीठ पर अवतरित हुए। फिर भारद्वाज गोत्र के ब्राह्मण ने भगवान नारायण की बहुत सेवा की पुत्र प्राप्ति करने के लिए, तो आदिशेष भगवान प्रकट हो गए यानी कि नाग। उन्होंने कहा, क्या बोला, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो फिर वो जो मुख है परशुराम जी का, उसके पीछे परशुराम जी स्वयं शिवलिंग की तरह लिंग के रूप में भी प्रकट हुए, तो दोनों वहां पर हैं। वो मुख जो है वो स्वयं परशुराम जी है, उसके पीछे जिस पर वो लगाया मुख वो लिंग है, जैसे शिवजी शिवजी का लिंग होता है ना, वैसे परशुराम जी भी लिंग रूप में वहाँ पर विराजमान है। तो ये जो अनंतेश्वर का मंदिर है वो यहाँ से केवल 5 मिनट अंतर पे है, और उसके सामने उडुपी का मंदिर है वो जो बहुत सालों के बाद में प्रकट हुआ है। सबसे पहले प्रकट क्या हुआ है? अनंतेश्वर, अनंत आसन या अनंत पद्मनाभ, ये तीनों नाम है उनके। फिर छोटी सी कैसी ऐसी कथा है कि जब परशुराम ने अवतार लिया तो फिर राजा ने उसका अभिषेक किया, स्नेक्स यानी कि जो नाग थे उनका भी अभिषेक किया और भगवान का भी अभिषेक किया। फिर भगवान ने कहा, परशुराम जी ने, कि शिव जी की द्वारा मुझे ये सब शक्तियां प्राप्त हुई थी जब मैंने अवतार लिया था। अभी ये सब भगवान की लीला है, इसमें शिव जी भगवान के बड़े नहीं होते हैं, भगवान शिव जी के ही अवतार हैं, शिव जी की निर्माण ही भगवान के द्वारा हुआ है। लेकिन भगवान जब अवतार लेते हैं तो अपने भक्तों से, अपने द्वारा निर्माण किए देवताओं से बहुत सारी सेवाएं लेते हैं। जैसे कि राम जी भगवान ने शिव जी को स्थापन किया और स्वयं शिव जी का पूजन किया, रामेश्वर महादेव का। तो लोग सोचते हैं कि शिव जी के भक्त श्री राम जी हैं, लेकिन शिव जी ऐसा नहीं कहते हैं, शिव स्वयं राम जी का नाम जपते हैं। दोनों एक दूसरे के समान ही है, लेकिन एक दूध की तरह एक दही के समान है। क्षीरम दधि विकार विशेष योगात, ऐसे स्वयं ब्रह्मा जी उसका वर्णन करते हैं ब्रह्म संहिता में, कि दूध जो होता है वो ओरिजिनल होता है और दूध से दही का निर्माण होता है, लेकिन दूध और दही में वैसे कोई अंतर नहीं होता है, लेकिन परिणाम में अंतर होता है। दूध का अतिरिक्त प्राशन करेंगे तो आपको दस्त लग जाएंगे, और दस्त लगने के बाद दही खाएंगे तो दस्त बंद हो जाएंगे। तो उसमें इन्ग्रेडियंट्स जो है ना वो सेम है, तत्व सेम है उनके अंदर, लेकिन परिणाम अलग है। तो वैसे भगवान परशुराम जी बता रहे हैं, शिव जी का गौरव कर रहे हैं कि मुझे धनुर्विद्या शिव जी ने सिखाई, जो मुझे परशु की शक्ति प्राप्त हुई वो शिव जी ने दी। तब उसके बाद मुझे शिव जी ने आशीर्वाद मांगा, तो उन्होंने कहा कि आप लिंग के रूप में आ जाओ, इसलिए मैं लिंग के रूप में आया। तो राम भोज की कहानी भी है, शिव जी की कहानी भी है, तो इसलिए रुप्य पीठ पर लिंग के रूप में और स्वयं के रूप में भी परशुराम भगवान प्रकट हुए। अभी अनंतेश्वर मंदिर के सामने एक दूसरा मंदिर है, उसका नाम है चंद्रमौलेश्वर मंदिर, चंद्रमौलेश्वर मंदिर, वो भी शंकर भगवान का मंदिर है, ये परशुराम जी का मंदिर है। तो बड़ी लंबी कहानी पुराण में आती है, वो ये कहानी ऐसी है कि एक बार चंद्र देवता ने एक यज्ञ किया, उस यज्ञ से वो इतने सुंदर हुए, यज्ञ से आगे बढ़ता गया, उसे बहुत सुंदर और सुंदर और सुंदर और सुंदर होते गए। वैसे चंद्र तो, वैसे भी चंद्र का अर्थ है कि सितारों का राजा, हाँ, किंग ऑफ ऑल स्टार्स, तो वैसे ही आकर्षित है वो। चंद्र नाम ही आप देखेंगे, प्रभु को भी हम राम चंद्र कहते हैं, कृष्ण चंद्र कहते हैं, हाँ, मायापुर चंद्र, नवद्वीप चंद्र, सुंदर वस्तु को चंद्र की उपमा दी जाती है, और भगवान को अक्सर जब भगवान अवतार लेते हैं तो उनको चंद्र का नाम से उपमा दी जाती है। लेकिन यज्ञ करने से और अति सुंदर हो गए वो, तो कहते हैं बृहस्पति की पत्नी उनसे बड़ी आकर्षित हो गई, और वो बृहस्पति के पास गई नहीं वापस, इन्हीं के पास रह गई, और फिर बहुत संघर्ष हुआ देवताओं के बीच में। अभी आपको बड़ा आश्चर्य होगा, कह रहे देवता तो बड़े आदरणीय होते हैं, वो भी ऐसे हमारे जैसे कार्य करते क्या, किसी की स्त्री से आकर्षित होना, फिर चले जाना, नहीं चले जाना, झगड़ा होना, वाद विवाद। तो कहने की और समझने की बात यह है, सब लोग ध्यान से सुनना, कि देवताओं का जीवन भी हमारे जैसा सामान्य होता है, केवल ऐश्वर्य बहुत होता है, सुंदरता बहुत होती है, हाँ, उनको हमारे से पसीने नहीं आते। वहाँ पर तो इतना अच्छा वातावरण है, इतना अच्छा भोजन है, इतने अच्छे फूल खिलते हैं वहाँ पर, हरेक के शरीर से सुगंध निकलता है, और हरेक के सुगंध में विशिष्टता होती है। अगर 100 लोग बैठे तो 100 सुगंध यहाँ घूमते रहेंगे वातावरण में, ऐसा वातावरण होता है। लेकिन व्यक्ति वैसे ही होती है जैसे हम होते हैं, वैसे ही काम वासना होती है, वैसे ही भोग वासना होती है, वैसे ही ईर्ष्या होती है, कोई अगर ज़्यादा पावरफुल हो गया तो ईर्ष्या भी करते हैं, केवल लोग डिफरेंट है, हाँ, समस्याएं सेम है, कई उदाहरण आते हैं उसके अंदर। इसलिए हम आपको विनती करते हैं कि कभी भी देवलोक में जाने का प्रयास मत करना, यहाँ पर लोग तपस्या करते हैं और कर्मकांड और पुण्य करते हैं ताकि देवलोक में प्रवेश करें, हाँ, बड़े भाग्यवान मानते हैं कि इस जीवन के अंत में स्वर्ग लोक में प्रवेश करेंगे, लेकिन स्वर्ग लोक में प्रवेश करने का प्रयास मत करना। वहां पर के लोग भी हमारे जैसे होते हैं, केवल कुछ विशिष्ट देवताएं होते हैं, वो महान होते हैं। जैसे हमारे भी यहाँ पर कुछ विशिष्ट लोग संत होते हैं कि नहीं, कोई तुकाराम महाराज है, कोई ज्ञानदेव महाराज है, कोई और बड़े बड़े संत महाराज होते हैं, लेकिन जनता आम ही होती है ना, उसमें से कुछ जिन्हें जो संत होते हैं, वैसे उनके अंदर भी संत देवताएं होते हैं। जैसे गणेश जी हैं, शिव जी हैं, ब्रह्मा जी हैं, शंकर जी हैं, कार्तिकेय हैं, वायुदेव हैं, चंद्र देवता, ऐसे बहुत सारे प्रगत होते हैं उसके अंदर। लेकिन वो प्रगत देवताओं के पास भी बहुत गलतियां होती रहती हैं। तो ऐसे ये सुंदरता बढ़ती गई तो बृहस्पति की जो देवताओं के गुरु हैं उनकी पत्नी भी आकर्षित हो गई, तो बृहस्पति नाराज हो गए बहुत। तो चंद्र कहते हैं कि मैं तो थोड़ी कह रहा हूँ उनको रहने के लिए, आप बुला लो और ले जाओ उसको। लेकिन वो ही खुद जाने को तैयार नहीं थी। फिर उनके संबंध हुआ तो उनका एक सुंदर पुत्र हुआ, उसका नाम है बुध, जो आज बुध तारा है ना, क्या कहते हैं, बुध ग्रह है ना, बड़ा सुंदर पुत्र का जन्म हुआ। लेकिन वो जन्म होने के पहले वो मान गए और ले गए उसको अपने घर पे। तो बृहस्पति को पता चला कि मेरी पत्नी तो गर्भवती है उनके द्वारा, तो पुत्र का जन्म होता है तो कहते हैं मैं उसको पालन नहीं करूँगा, पुत्र को वापस भेज दो उनके पास। तो पुत्र चंद्र के पास भेज देते हैं, और चंद्र जो है उस समय चंद्र का विवाह 27 कन्याओं से होता है, हो चुका होता है पहले से ही। वो 27 कन्याएं कौन थी, दक्ष राजा की कन्याएं थी, दक्ष राजा, और सब वो नक्षत्र स्वरूप थे, मतलब वो सब जो कन्याएं थी ना अरुंधति, वो सब नक्षत्र बने हुए हैं आज। तो वो दक्ष राजा प्रजापति थे, ब्रह्मा जी के पुत्र हैं वो, और उनको 27 कन्याएं हुई, और 27 कन्याओं का विवाह उन्होंने चंद्र देवता के साथ कर दिया था। और जब विवाह किया था ना, तभी उन्होंने उनसे वादा किया, मांगा था कि देखो मैं आपकी 27 कन्याओं का विवाह आपके साथ कर रहा हूँ, मुझे एक ही वचन चाहिए कि आप सब पर समान प्रेम करेंगे, किसी पर आप ज़्यादा कम नहीं करेंगे, हाँ आवड़ती ना आवड़ती ऐसा नहीं करेंगे कोई ज़्यादा प्रिय कम प्रिय ऐसा नहीं होगा। तो उन्होंने वादा किया था उनको। तो तब तक इन 27 में से किसी भी कन्या को, किसी भी पत्नी को पुत्र प्राप्ति नहीं हुई थी जब ये यज्ञ किया गया, और इससे पुत्र प्राप्ति हुई तो भी किसी और स्त्री से हुई। फिर भी चंद्र देवता ने उसको कहा कि इसको कौन देखभाल करेगा, तो दोनों दो खाली पत्नियां सामने आई, रोहिणी और कृतिका, उन्होंने इसका लालन पालन करना शुरू किया। और नेचुरली इस पुत्र का लालन पालन जिसने किया उस पर उनका ज़्यादा मोह और ज़्यादा प्रीति होने लगी, और बाकी 25 जो कन्याएं थी, पत्नियां थी, उन पर दुर्लक्ष होने लगा। तो 25 कन्याएं जो हैं वो अपने पिता के पास एक दिन सहन करते 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 ज़्यादा हो गया, बहुत उन नहीं सुधरे चंद्र भगवान, तो फिर वो अपने पिता के पास गए और कंप्लेंट किया। तो पिता इतने शक्तिशाली थे दक्ष महाराज, उन्होंने चंद्र को बुलाया और सवाल पूछा, ऐसा क्यों किया आपने? तो चंद्र ने उसको ज़्यादा, मतलब क्या कहते हैं उसको, महत्व नहीं दिया। दक्ष राजा को बहुत क्रोध हुआ, उन्होंने कहा आपने वादा किया था कि आप सभी मेरे कन्याओं पर समान प्रेम करेंगे, आपने नहीं माना और अभी भी नहीं मान रहे हो, मैं आपको शाप देता हूँ कि आपका सौंदर्य नष्ट हो जाएगा, आपकी क्षति हो जाएगी, आपको क्षय होगा, आपके अस्तित्व का क्षय होगा। उसको आप दो तरह के समझ सकते हैं, या तो शरीर को कम कम होने का समझ सकते हैं, या तो राज यक्ष्मा यानी टीबी ये समझ सकते हैं। राज यक्ष्मा भी व्यक्ति का कम कम होता है ना, टीबी होने के बाद कम 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 होने जाता है। तो वैसे वो देखते देखते ऐसे कम 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 होने लगे, परेशान हो गए बेचारे, सारा सौंदर्य का अहंकार नष्ट हो गया, अभी क्या करेंगे, दिन ब दिन नष्ट होते जा रहे हैं, ऐसे नहीं है, ऐसे कहते ना चंद्रकोर, ऐसे रह गए वो। उस समय शिव जी के पास भाग के गए वो, और शिव जी की शरण ले ली उन्होंने। शिव जी बड़े दयालु हैं, हाँ जो भी संकट में आता है तो वो उसको आश्रय दे देते हैं। तो शिव जी ने उनको सर पे धारण किया अपने, और उनका क्षय वहीं पर रोक लिया, और कहा कि दक्ष राजा का जो शाप है उसको मैं काट नहीं सकता, लेकिन तुम्हें उस शाप दे सकता हूँ, उससे बचा सकता हूँ आगे क्षति होने से, कि आप क्षति होंगे लेकिन पुनः आपको सौंदर्य और वृद्धि प्राप्त हो जाएगी। तो चंद्र का उन्होंने इस तरह से कहते, चंद्र ने यहाँ पर आकर निवास किया, और यहाँ पर बहुत पुराना कुंड था, अभी नहीं है वो, नष्ट हो गया, उसमें उन्होंने स्नान किया, तपस्या किया, व्रत किया। शिवजी ने उनको बहुत गाइडेंस दिया, उनके मार्गदर्शन में उन्होंने व्रत किया, और शिवजी के आश्रय में व्रत होने की वजह से वो व्रत से मतलब मुक्त नहीं हुए, लेकिन नष्ट होने से बच गए और दोबारा वृद्धि। इसलिए चंद्र देवता कैसे होते हैं, 15 दिन क्षय होते, अचानक नष्ट होते, लेकिन नष्ट नहीं होते, लेकिन वापस फिर प्रथमा से, प्रतिपदा से, द्वितीया, पूर्णिमा होकर पूर्ण हो जाते हैं, फिर पूर्णिमा से वापस क्षय प्राप्त करते हैं। और किसी देवता का ऐसा नहीं होता है। और कहते हैं चंद्र देवता को और पहले भी दो श्राप प्राप्त हो चुके हैं। एक बार गणेश जी ने एक पंगत में बहुत अच्छा भोजन किया और तो चलते समय वो फिसल गए, तो चंद्र देवता उनको जोर से देख के हंसे। तो वो दिन विनायक की चतुर्थी थी उस समय, तो उनको श्राप प्राप्त हुआ कि आपका मुंह कोई देखेगा नहीं इस समय, जो मुंह देखेगा आपका इस दिन को, जिस दिन आप हंसे मुझ पर, उनको बहुत भयंकर पाप लगेगा। ऐसे देवताओं के बीच में चलते रहता है। हाँ, आप पुराण पढ़िए, आपको पता चलेगा। अगर बुद्धिमान है आप ना, अगर बुद्धिमान नहीं है तो आपको लगेगा अरे वाह कितना अच्छा भोग है वहाँ पर, कितने अच्छे कपड़े, कितने अच्छे खाना पीना, कितने सुंदर पत्नियाँ, कितने अप्सराएं, नंदन वन, क्या क्या है वहाँ पर। लेकिन अगर आप गहराई में जाओगे ना, जीवन के उद्देश्य के स्तर पर, पर्पज ऑफ लाइफ, इस विषय में आप गहराई में जाओगे तो आपको समझेगा कि यहाँ की जो समस्याएं हैं वहाँ की समस्याओं में कोई अंतर नहीं है। इसलिए भक्त लोग जो है वो देवता कभी बनना नहीं चाहते, वो सीधे यहाँ से भगवत धाम जाना चाहते हैं, बीच में कोई हॉल्ट में फंसना नहीं चाहते। कोई बीच बीच में, कोई बीच में बहुत लोग हैं, हाँ, भूलोक, भूवर लोक, स्वर्ग लोक, तपलोक, जनलोक, महरलोक, सत्यलोक, ऐसे बहुत 7 प्रकार के स्वर्ग लोक हैं। उसमें चढ़ती कमान में सुविधाएं हैं जो आपको स्वर्गलोक में मिलते हैं। स्वर्गलोक तो कुछ भी नहीं है तपलोक और महरलोक और जनलोक और सिद्धलोक के सामने। एक लोक तो ऐसा होता है जहाँ पर लोग सूरज की किरणों पर प्रवास करके सूरज लोक में प्रवेश करते हैं। कैन यू इमेजिन दिस, जैसे हम लोग सीढ़ी चढ़ के ऊपर आए ना पहले माले पे, ऐसे सूरज के किरणों को पकड़कर उसमें चढ़कर सूर्य लोक में प्रवेश करते हैं। मन की इच्छा से हल्के हो जाते हैं, मन की इच्छा से भारी हो जाते हैं, पहाड़ से भी अधिक भारी हो जाते हैं। ऐसे कई कलाएं हैं। गंधर्व लोक में तो जन्म लेते ही गायक बन जाते हैं, यक्ष लोक में, किन्नर लोक में, किम पुरुष लोक में जन्म से ही कलाओं में मास्टर हो जाते हैं। कोई अलग से क्लास करने की जरूरत नहीं आपको। जैसे बंदर कैसा होता है, जन्म से गोल्ड मेडलिस्ट एथलीट होता है वो, है ना। उसको इससे कोई क्लास होता है क्या, उसका मम्मी का क्लास, पापा का क्लास, कोई क्लास नहीं है। जन्म होते ही वो एक हाथ से शाखा पकड़ता है, फिर ऊपर गोल गोल घूमता है, कुछ भी कर लेता है वो। जन्म से उस शरीर में सिद्धि है एथलीट होने की, जिमनास्ट होने की। वैसे ही उन लोगों के अंदर बहुत सारी सिद्धियां जन्म से ही प्राप्त है। वहां जन्म लेते ही उस शरीर में वो सब कलाएं अपने आप पैदा हो जाती है। लेकिन इन सारी कलाओं के होते हुए भी मन के विकार नष्ट नहीं होते हैं। काम क्रोधादि जो विकार हैं वो सब वैसे ही रहते हैं। जैसे अभी आप समझो अचानक आप अब्जोपति बन गए, अब्जोपति बनने के बाद क्या होगा, संपत्ति बढ़ जाएगी, मन में जो विकार हैं वैसे ही रहेंगे, मन में जो काम क्रोध ईर्ष्या जो है बसी है वो वैसे ही रहेगी। वो धन संपत्ति और समृद्धि आने से नष्ट नहीं होगी ना, वो अपने आप ही वैसा ही है। यहाँ पर हम लोग, पृथ्वी के लोग इतने अमीर नहीं होते हैं, स्वर्ग से हमसे बहुत ज़्यादा कला वाले और बहुत ज़्यादा उम्मीद होते हैं, लेकिन विकार वैसे ही होते हैं। जैसी साधना हमको करनी पड़ती है आत्मशुद्धि के लिए, वैसे उनको भी करनी पड़ती है। उनको भी वही चैलेंजेस हैं, चुनौतियाँ हैं जैसे हमको है। तो वहाँ पर जाके वेस्ट क्यों करें टाइम, हम क्यों वेस्ट नहीं करना चाहिए। इंद्र तो देवताओं का राजा है, उसके पास तो सारे सामान्य देवताओं से भी अधिक समृद्धि है उनके पास। और उसकी क्या अवस्था है, अरे दुर्वासा मुनि एक बार वैकुंठ से आ रहे थे और स्वर्ग में गए इंद्र को मिलने के लिए। वो जाते जाते बोले वैकुंठ से आ रहा हूं, तो भगवान विष्णु की महाप्रसादी माला लेकर गए वो कि इंद्र को मैं प्रसाद दूंगा उसका। जो कितनी दयालु होते हैं, देखो आप खुद गए विष्णु को मिलने के लिए, लेकिन इंद्र को याद कर रहे कि इंद्र को मिलने जाऊंगा तो महाराज जी माला देना आपकी, मैं उनको पहनाऊंगा उसको। और बेचारे वहां से गए इंद्रलोक में और इंद्र के माला देने के लिए खड़े हैं उधर, तो हमारे इंद्र महाराज तो अप्सराओं का डांस देखने में बिजी है। दुर्वासा मुनि आए हैं, साधारण तपस्वी जीव नहीं है वो, महान तपस्वी जीव है। दुर्लक्ष करते हैं उसको, फिर भी वो माला देते हैं उसको। तो हाथी पर बैठकर अप्सराओं का नृत्य देखने में मग्न है पूरा, इतने मग्न है कि उनको भान ही नहीं है बात का कि कौन आए हैं। ये नाच गाना बंद करके दंडवत प्रणाम करना चाहिए उनको, सत्कार करना चाहिए उनका, पैर धोने चाहिए उनको, नाच बाद में कंटिन्यू करेंगे ऐसे बोलना चाहिए, लेकिन नहीं किया उन्होंने ऐसे। वो माला लिया ऐसे ही कैजुअली लिया माला
और माला देके हाथी के हाथ में दे दिया। हाथी ने अपनी सुंड में लेकर पैल में कुचल दिया उसको, भगवान की प्रसादी माला को। सोचो आप, तो आपको इंद्र बनना है क्या? अरे इंद्र बनकर डांस शुरू हो गया तो गया काम से आप। तो उसी समय उनको शाप प्राप्त हुआ, दुर्वासा ने शाप नहीं दिया कि भगवान की महाप्रसादी माला का आपने अपमान किया, आपका सारा ऐश्वर्य नष्ट हो जाएगा, सारा साम्राज्य नष्ट हो जाएगा। तुरंत राक्षस लोगों ने आक्रमण किया और भगा दिया सबको। सभी देवता राजा सिंहासन में बैठे हुए थे, जाकर गुफाओं में छुप छुप के भागने लगे। इतने राक्षस लोग प्रभावी हो गए कि देवताओं का पुण्य नष्ट हो गया, सब कुछ सौंदर्य नष्ट हो गया, ऐश्वर्य नष्ट हो गया, साम्राज्य नष्ट हो गया, घर से मोहताज हो गए, गुफाओं में छुप छुप के जीने लगे। राक्षसों ने उन पर अपना साम्राज्य जमा दिया। फिर बहुत समय के बाद में दोबारा कुछ यज्ञ वगैरह किया, तब जाके समृद्धि प्राप्त हुई। क्या फायदा है देवता बन के ऐसे? अगर हमारी मति भ्रष्ट हो सकती है ऐसे सौंदर्य से और ऐश्वर्य से, नहीं प्राप्त करना ही अच्छा है, सादगी में रहना अच्छा है, भगवान का नाम लेना ही अच्छा है। और एक लाभ क्या है यहाँ रहने का? वहाँ का जीवन लाखों सालों का होता है, लाखों सालों का। यहाँ का जीवन अभी कलयुग में 100 साल कहते हैं, लेकिन शुरुआत में 100 साल थे, अभी 58 साल हो गए हैं, और धीरे धीरे और कम होते जा रहे हैं। और कहते हैं डॉक्टरों का लाइफ स्पैन उससे भी कम है, बाकी लोगों का तो ठीक है, लेकिन डॉक्टरों का लाइफ स्पैन जो है बहुत कम कम होते जाता है। और वहाँ पर हजारों लाखों सालों का जीवन होता है, वो भी भोग से भरा हुआ है। यहाँ पर 100 साल के अंदर अगर हम 50-60 साल 70 अगर भगवान के नाम का आश्रय लेते हैं, तो उतने ही छोटे काल में जीवन की परिपूर्ति परिपूर्णता प्राप्त करके भगवत धाम की प्राप्ति कर सकते हैं। इसीलिए कलयुग में जो भगवान के भक्त बनते हैं, आप जैसे सब लोग भगवान के भक्त बनते हैं, तो आपके घरों में जन्म लेने के लिए बुद्धिमान देवताएं लाइन लगाकर खड़ी रहती हैं कि कब जाकर हमें किसी वैष्णव के घर पे पृथ्वी पर जन्म मिले, तो छोटी सी आयु में परिपूर्णता प्राप्त करके हम भगवत धाम की प्राप्ति कर सकते हैं। बुद्धिमान देवता क्यों कहा मैंने? क्योंकि सभी देवता इतनी बुद्धिमान नहीं होती है, सभी भोग में लगे रहते हैं, कंप्लीटली एंग्रॉस्ड इन एंजॉयमेंट। उसमें से जिनको ज्ञान होता है, नारद मुनि, अंगिरा मुनि, दुर्वासा मुनि के संग से जिनको बुद्धि प्रकाशित होती है, वो फिर ये विचार में आते हैं कि अरे यहाँ का जीवन तो बहुत लंबा है, बहुत भोग है इसके अंदर, बहुत भूलभुलैया है, बहुत मोह है इसके अंदर। तो वो सब लोग अपनी इच्छा से पृथ्वी पर वैष्णवों के घर में जन्म लेने के लिए तरसते रहते हैं। और जब वैष्णव पुत्र और वैष्णव कन्या विवाह करते हैं तो उनके घर में वो प्रवेश करते हैं। इसलिए वैष्णवों के घर में जो बालक होते हैं ना, वो अक्सर देवताओं के गुण लेकर जन्म लेते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।